नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन्ना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैथमेटिक्स खेल विश्लेषण पर वेन एल विंस्टन की गैर कथा पुस्तक है, जिसका दूसरा संस्करण आधुनिक खेलों में गणित, आंकड़ों और निर्णय विज्ञान के उपयोग को समझाता है। इसका उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि किसी खिलाड़ी या टीम के आंकड़े क्या है, बल्कि यह जांचना है कि वे आंकड़े प्रदर्शन, रणनीति और संभावित परिणामों के बारे में वास्तव में क्या कहते हैं। पुस्तक बेसबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल से आरंभ करती है तथा नए संस्करण में सॉकर, ई स्पोर्ट्स, गोल्फ और वॉलीबॉल जैसे क्षेत्रों तक दायरा बढ़ाती है। विंस्टन कोचों, प्रबंधकों, प्रशंसकों और सट्टेबाजी में रुचि रखने वाले पाठकों के सामने ऐसे प्रश्न रखते हैं जिनका सहज उत्तर अक्सर भ्रामक होता है। उदाहरण के लिए, बंट करना, ओवरटाइम नियम या केवल अंक, रिबाउंड और असिस्ट से खिलाड़ी की गुणवत्ता मापना। पुस्तक की खासियत यह है कि यह विश्लेषण की तर्क प्रक्रिया को एक्सेल आधारित गणनाओं और वास्तविक खेल संदर्भों के साथ जोड़ती है, इसलिए यह खेल प्रेमी के लिए आंकड़ों को पढ़ने की दृष्टि और शुरुआती विश्लेषक के लिए प्रयोग योग्य कार्यपद्धति दोनों प्रदान करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सतही आंकड़ों के बजाय खिलाड़ी के वास्तविक प्रभाव का मापन। पुस्तक का एक केंद्रीय तर्क यह है कि खेल के प्रचलित आंकड़े अक्सर प्रदर्शन की अधूरी तस्वीर देते हैं। बास्केटबॉल में अंक, रिबाउंड और असिस्ट उपयोगी हैं, लेकिन वे यह अलग से नहीं बताते कि खिलाड़ी ने टीम के कुल प्रदर्शन को कितनी सीमा तक बेहतर किया। किसी खिलाड़ी के अंक अधिक हो सकते हैं, फिर भी वे कम दक्ष शॉट चयन, अधिक अवसरों के उपयोग या साथियों के योगदान को छिपा सकते हैं। इसी समस्या के लिए विंस्टन समायोजित प्लस माइनस जैसे दृष्टिकोणों की चर्चा करते हैं। इसका मूल विचार अलग अलग लाइनअप और खेल परिस्थितियों में स्कोर अंतर को देखना है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी खिलाड़ी के कोर्ट पर होने से टीम को क्या अतिरिक्त लाभ या हानि हुई। यह तरीका संदर्भ को आंकड़े में शामिल करने का प्रयास है। पुस्तक इस बात पर भी जोर देती है कि कोई एक सूचक अंतिम सत्य नहीं होता। नमूना आकार, साथी खिलाड़ी, विरोधी टीम और भूमिका जैसे तत्व निष्कर्ष को बदल सकते हैं, इसलिए बेहतर मूल्यांकन का अर्थ अधिक आंकड़े जमा करना नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछना और माप की सीमाओं को समझना है। यही दृष्टि प्रतिभा चयन, लाइनअप निर्माण और प्रशंसकीय बहस तीनों को अधिक सावधान बनाती है। दूसरा, रणनीतिक निर्णयों में अपेक्षित परिणाम की गणित। मैथमेटिक्स खेल रणनीति को परंपरा या तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय अपेक्षित परिणाम के आधार पर परखती है। बेसबॉल में बंट इसका प्रमुख उदाहरण है। बंट करने पर एक आउट देकर धावक को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, इसलिए वह देखने में सुरक्षित निर्णय लगता है। लेकिन निर्णय का उचित मूल्यांकन यह देखकर होता है कि आउट की लागत के बाद उस इनिंग में अपेक्षित रन कितने रह जाते हैं। यदि बंट से रन बनने की औसत संभावना घटती है, तो केवल धावक को आगे पहुंचाना सफलता का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। पुस्तक का निष्कर्ष यह नहीं कि हर परिस्थिति में बंट निषिद्ध है, बल्कि यह कि सामान्य परिस्थितियों में उसका लाभ अक्सर अनुमान से कम होता है। यही तर्क फुटबॉल के ओवरटाइम नियमों की निष्पक्षता पर भी लागू होता है। नियम का आकलन केवल रोमांच या परंपरा से नहीं, दोनों टीमों को मिलने वाले अवसरों और जीत की संभावनाओं के वितरण से होना चाहिए। इस तरह पुस्तक निर्णय वृक्ष, संभाव्यता और अपेक्षित मूल्य को खेल की भाषा में रखती है। पाठक सीखता है कि अच्छी रणनीति कभी कभी सहज बुद्धि के विरुद्ध दिख सकती है, क्योंकि गणित तत्काल दृश्य के बजाय सभी संभावित परिणामों का भारित हिसाब करता है। तीसरा, रेटिंग प्रणालियों और भविष्यवाणियों में संदर्भ की अनिवार्यता। खेल में रैंकिंग और पूर्वानुमान आकर्षक इसलिए लगते हैं क्योंकि वे जटिल प्रदर्शन को एक संख्या में बदल देते हैं। पुस्तक सावधान करती है कि ऐसी संख्याएं तभी अर्थपूर्ण हैं जब उनके निर्माण की धारणियां स्पष्ट हों। जीत हार का रिकॉर्ड, उदाहरण के लिए प्रतिद्वंदियों की गुणवत्ता, घरेलू मैदान, कार्यक्रम की कठिनाई और संयोग से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कॉलेज बास्केटबॉल की आरपीआई जैसी रेटिंग प्रणालियों पर चर्चा इसी व्यापक समस्या को सामने लाती है। यदि मॉडल प्रतिद्वंद्वी की ताकत को अनुचित ढंग से तौलता है, तो किसी कमजोर टीम के विरुद्ध जीत भी रैंकिंग के लिए विचित्र परिणाम दे सकती है। पुस्तक का उपयोगी पाठ यह है कि मॉडल की आलोचना करना आंकड़ों का विरोध नहीं है, इसके विपरीत यह बेहतर मापन की मांग है। पाठक को यह सोचना चाहिए कि मॉडल किस परिणाम को माप रहा है, कौन से कारक छोड़ रहा है और उसका निष्कर्ष किन परिस्थितियों में कमजोर पड़ सकता है। यही अनुशासन खेल सट्टेबाजी में भी जरूरी है, जहां संभाव्यता का अनुमान और बाजार का भाव एक ही चीज नहीं होते। ऐतिहासिक आंकड़ों से निकला अनुमान भविष्य की गारंटी नहीं है। अनिश्चितता को स्वीकारना और मॉडल के त्रुटि को समझना किसी भी पूर्वानुमान को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की शर्त है। चौथा, बेशन अनुमान। रिज प्रतिगमन और कैमरा डेटा का विस्तृत विश्लेषण। दूसरा संस्करण खेल विश्लेषण के विकसित होते साधनों को शामिल करता है, जिनमें बेयिशन अनुमान, रिज प्रतिगमन और कैमरा डेटा का विश्लेषण प्रमुख हैं। इनका महत्व केवल तकनीकी नवीनता में नहीं, बल्कि उस समस्या में है जिसे वे हल करने का प्रयास करते हैं। खेल आंकड़े अक्सर सीमित नमूने, आपस में जुड़े चर और शोर से भरे होते हैं। बेयिशन अनुमान किसी नए अवलोकन को अकेले देखने के बजाय पहले से उपलब्ध ज्ञान के साथ जोड़कर अनुमान को संतुलित करता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी हो सकता है जब खिलाड़ी के पास कम खेल या कम अवसरों का रिकॉर्ड हो। रिज प्रतिगमन उन स्थितियों में सहायक है जहां अनेक कारक एक दूसरे से संबंधित हों, जैसे लाइनअप में साथ खेलने वाले खिलाड़ियों का प्रभाव। यह मॉडल को अत्यधिक अस्थिर निष्कर्षों तक पहुंचने से रोकने का एक तरीका देता है, कैमरा डेटा चर्चा का दायरा और बढ़ाता है, क्योंकि वह केवल अंतिम परिणाम नहीं बल्कि गति, स्थान और खेल के भीतर की क्रियाओं से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकता है। फिर भी पुस्तक का व्यापक संदेश यही रहता है कि उन्नत विधि अपने आप बेहतर उत्तर नहीं देती। डेटा की गुणवत्ता, सवाल की स्पष्टता और परिणाम की व्याख्या हर मॉडल के लिए निर्णायक है। अंत में एक्सेल के माध्यम से पारदर्शी और दोहराए जा सकने वाले खेल विश्लेषण। मैथमेटिक्स की व्यावहारिक पहचान यह है कि यह खेल विश्लेषण को केवल विशेषज्ञों के लिए बंद क्षेत्र की तरह प्रस्तुत नहीं करती। विंस्टन गणना के पीछे का तर्क समझाने के साथ एक्सेल का उपयोग करके डेटा के साथ काम करने की दिशा भी देते हैं। इससे पाठक वेब से उपलब्ध आंकड़ों को लेकर औसत, संभाव्यता, तुलना, प्रतिगमन और अन्य मूल विश्लेषण स्वयं आजमा सकता है। यह पहुंच महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी मॉडल पर विश्वास करने के लिए उसके निष्कर्ष को केवल स्वीकारना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यदि विधि पारदर्शी है तो पाठक इनपुट बदलकर, अलग नमूना लेकर या वैकल्पिक धारणा रखकर देख सकता है कि निष्कर्ष कितना स्थिर है। पुस्तक का यह पक्ष खास तौर पर उन प्रशंसकों, छात्रों और शुरुआती विश्लेषकों के लिए उपयोगी है जो प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ नहीं है। साथ ही यह पारदर्शिता झूठी निश्चितता के विरुद्ध सुरक्षा देती है। जटिल शब्दावली या गोपनीय सूत्र किसी विश्लेषण को स्वतः विश्वसनीय नहीं बनाते। पुस्तक वैकल्पिक दृष्टिकोणों को जगह देने की प्रवृत्ति भी दिखाती है, जिससे पाठक एक ही माप को निर्णायक मानने के बजाय विधियों की तुलना करना सीखता है। इस प्रकार एक्सेल यह केवल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि जांचने, पुनरुत्पादित करने और तर्क पर बहस करने का माध्यम बनता है। निष्कर्ष में मैथमेटिक्स उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो खेल को केवल परिणाम, स्टार खिलाड़ियों और पारंपरिक टिप्पणियों के स्तर पर नहीं समझना चाहते। खेल पत्रकारिता, टीम प्रबंधन, फैंटेसी खेल, सट्टेबाजी या डेटा विश्लेषण में रुचि रखने वाले लोग इससे उपयोगी प्रश्न और बुनियादी उपकरण पा सकते हैं। गणित या सांख्यिकी के विद्यार्थी भी देख सकते हैं कि संभाव्यता, प्रतिगमन और अनुमान जैसी विधियां वास्तविक निर्णयों में कैसे लागू होती है। पुस्तक का लाभ किसी अचूक भविष्यवाणी सूत्र में नहीं है, इसका वास्तविक लाभ यह सिखाने में है कि आंकड़ों के दावे को कैसे जांचें, संदर्भ को कैसे शामिल करें और अनिश्चितता के साथ निष्कर्ष कैसे निकालें। खेल विश्लेषण की अनेक पुस्तकों में या तो किसी एक खेल का गहरा इतिहास होता है या फिर अत्यधिक तकनीकी मॉडल होते हैं। विंस्टन की पुस्तक अलग इसलिए है कि वह कई खेलों के ठोस प्रश्नों को सुलभ गणितीय व्याख्या और हाथों से किए जा सकने वाले विश्लेषण के साथ जोड़ती है। दूसरा संस्करण नए खेलों और आधुनिक तरीकों को शामिल करके इसके दायरे को व्यापक बनाता है। फिर भी पाठक को इसे आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉडल की उपयोगिता डेटा, धारणाओं और संदर्भ पर निर्भर रहती है। जो व्यक्ति तैयार उत्तरों के बजाय निर्णय के पीछे की गणित समझना चाहता है, उसके लिए यह खेल विश्लेषण का मजबूत और व्यावहारिक परिचय है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं वेन एल विंस्टन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।